सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। भगवान की बड़ी भारी कृपा है, उत्तम देश, उत्तम काल, उत्तम जाति, उत्तम धर्म में जन्म हुआ है, परंतु सबसे बढ़कर बात तो यह है कि अपना समय भगवान की चर्चा में व्यतीत होता है। यह सबसे बड़ी भगवान की कृपा है। सब कृपाओं को पीछे छोड़ो, यह सबसे बड़ी कृपा है। आगे आने वाला समय कैसा है पता नहीं। यदि सत्संग आदि कार्यों में लगे तो भगवान की दया समझना, और बुरे कार्यों में समय लगे तो अपने स्वभाव का दोष समझना। ऐसा नहीं कि सत्संग में तो भगवान की दया है और बुरे कामों में ये भी कोई भगवान की कोई दया ही होगी, भगवान ही लगा रहे होंगे, ऐसा नहीं है। अपने स्वभाव का दोष समझना, दोनों बातें अलग अलग है। दोनों ही बातें प्रारब्ध पर नहीं है। अपने द्वारा कोई खराब कर्म हो, खराब क्रिया हो, तो उसे अपने स्वभाव का दोष समझना चाहिए, और अपने द्वारा बढ़िया क्रिया हो तो उसे भगवान की कृपा समझनी चाहिए। भगवान की कृपा का फल परम कल्याणकारक ही होता है, और अपने स्वभाव की क्रिया का फल दुख रूप होता है। पर यदि आप भगवान की तरफ चलेंगे तो भगवान की कृपा से आपके स्वभाव का जो क्रिया का फल है दुख, वो माफ हो जाता है। ये सिद्धांत हृदय में रखना चाहिए। अपने द्वारा यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, सेवा, उपकार, भगवान का भजन, सत्संग, स्वाध्याय हो तो भगवान की कृपा समझो। ये भगवान की कृपा से हुआ है। भगवान ही हमें बुरे कर्मों से हटाकर अच्छे कर्म में लगाते हैं। झूठ, कपट, चोरी, डकैती, बेईमानी आदि कोई भी बुरा काम हो तो उसे अपने स्वभाव का दोष समझना चाहिए। और एक रहस्य की बात है, कितना ही कोई कुसंग क्यों न मिल जाए, महात्माओं पर कुसंग का असर नहीं पड़ता है। यदि कुसंग का प्रभाव हमारे पर पड़ता हो तो फिर महात्माओं पर भी पड़ना चाहिए। महात्माओं पर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता तो इसका अर्थ यह है कि उन्होंने अपने स्वभाव को अच्छा बना लिया, हमने स्वभाव को अच्छा नहीं बनाया, तो हमारे स्वभाव में जो दोष है वो दूसरे दोष को खींचता है, पकड़ता है। दूसरे आदमी के माथे चाहे मंड दो कि कुसंगी का साथ हो गया, इसलिए मेरे में खराबी आ गई, इसलिए मेरे से दोष घटित हो गया, पर वह खराबी आपने स्वीकार की है तभी आई है, बलपूर्वक थोड़ी आई है। अतः कुसंग का त्याग तो करो, उसके पास ही मत जाओ, कुसंग का नाम ही मत लो, परंतु कुसंग बलपूर्वक हमको खराब कर देता है ये बात नहीं है। सत्संग से लाभ होता है, अपने लोगों को सत्संग करना चाहिए। सत्संग भगवान की दया से मिलता है। सत्संग से जो लाभ होता है वो भी भगवान की दया से होता है। सत्संग ईश्वर की कृपा है जो परम लाभ पहुंचाती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ये तो लाभ उठाने पर है। पक्षी आकाश में कितना ही दौड़ लो, जितनी उसके पंखों में शक्ति है दौड़ते चले जाओ, आकाश का कोई अंत नहीं। ऐसे ही मछली सागर में कितनी दूर जाओ कोई अंत नहीं। ऐसे भगवान की दया की क्या सीमा है। हम लोग जो भगवान की दया समझते हैं वो तो बहुत सीमित समझ रहे हैं। हमको तो ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक भगवान की दया समझनी चाहिए। हर एक लीला में, हर एक बात में, हर एक समय में, हर एक परिस्थिति में, जीने में, मरने में, बीमारी में और हर किसी परिस्थिति में केवल भगवान की दया को देख करके मुग्ध हो जाए तो उसको भगवत प्राप्ति में देरी नहीं है। और हम तो कहते हैं कि ऐसा मुग्ध हो कि वो भगवान की दया में बेहोश हो जाए तो भगवान आकर उसको चेत कराएंगे, अरे भैया मेरी दया में इतने मुग्ध हो गए, लो उठो हम तुमको चेत कराते हैं। जब तक भगवान के साक्षात दर्शन नहीं हो तब तक हमने भगवान की दया समझी नहीं है। भगवान की दया में कमी नहीं है, हमने समझी नहीं है। भगवान की दया अपरिमित है, उसका रहस्य समझना चाहिए। दया दया का तो कोई अंत नहीं है, दया के रहस्य का भी अंत नहीं है। परंतु सागर का जल यदि एक छोटी सी शीशी में लाया जाता है तो कहते हैं कि ये सागर का जल है, तो वो तत्व समझ में आता है। ऐसे भगवान की दया का तत्व भी समझ में आ जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। जिधर अपनी दृष्टि जाए चारों तरफ दया ही दया है, दया का ही सागर भरा हुआ है। सागर में ऊपर नीचे जैसे पानी पानी, ऐसे दया ही दया है, दया ही दया है। हम तो और बात कहते हैं कि सागर का किनारा तो है, यहां तो कोई किनारा ही नहीं है। भगवान के दया को देख देख कर मनुष्य हंसता रहे, हंसते 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 ही मर जाए तो कितने आनंद की बात है। अरे अब जीवन में रखा ही क्या है, अब जी के करोगे ही भी क्या। भगवान की दया समझ ली, दया समझते समझते हंसते हंसते मर जाओ, ऐसी बढ़कर मौत आएगी क्या। दया के सागर में डूब जाए, पर संसार के सागर में नहीं डूबना है। दया के सागर में अपने को डुबो कर ही रखो। भगवान ने सूर्य के द्वारा प्रकाश, बादलों के द्वारा जल और पर्याप्त हवा जीवन चलाने के लिए दिया है, कितनी दया है। क्या हवा के बिना हमारा शरीर रह सकता है। और कोई मूल्य नहीं मांगा भगवान ने, कोई टैक्स नहीं लगाया। प्रकाश है, जल है, हवा है, लाखों रुपए खर्च करने पर भी प्राप्त नहीं हो सकते, भगवान ने मुफ्त दिया है, कितनी दया है। इससे भी बढ़कर दया है कि भगवान ने हम लोगों को स्त्री पुत्र धन मकान, शरीर में बल, बुद्धि में ज्ञान आदि दिया है। ये सब सामग्री परमात्मा की प्राप्ति के लिए दी है, ये केवल अपने भोग इसमें इस्तेमाल करने के लिए नहीं दी है। यह तो भगवान की दया है ही कि उन्होंने हमको ये चीजें दी है, किंतु उनसे भी बढ़कर दया है जब भगवान प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करते हैं। जब प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करते हैं और हमें दुख और क्लेश देते हैं, अर्थात भगवान हमसे ये चीज लेते हैं, जैसे स्त्री मर गई, पुत्र मर गया, धन चला गया, बीमारी हो गई, ये भगवान की अतिशय कृपा है, अतिशय कृपा। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। जिस सुख के मिलने पर भगवान को भूल जाए, उस सुख के माथे पर पत्थर पड़े, दुख की बलियारी है जो क्षण क्षण में भगवान की याद कराए। संसार में भगवान दुख में याद आते हैं। किसी भक्त ने ठीक कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। दुख में सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई नहीं करता। सुख में भजन करे तो दुख होता ही नहीं है। अच्छा तो दुख ही है जो भगवान का सुमिरन कराता है बेचारा। इसी प्रकार हमारे शरीर में ज्वर हो गया, बुखार आ गया, कोई बीमारी आ गई, उस समय में भगवान याद आते हैं तो वो बीमारी कितनी लाभ की बात है। और डॉक्टर वैद कह दें कि साहब अब तो आपका शरीर थोड़े ही दिनों का है, अब आपको जो करना है सो कर लीजिए, उस समय घबराने की बजाय विशेष भगवान का स्मरण करना चाहिए। परिवार वालों को भी मोह छोड़ करके, उनको शोक मोह छोड़ करके भगवान के भजन की बात कहनी चाहिए। संसार की कोई भी विपत्ति आए तो भगवान की विशेष दया समझनी चाहिए, क्योंकि बीमारी होती है वो पाप का फल है। तो एक तो वो बीमारी के रूप में पाप कटता है, तो पाप कटने से हम पवित्र होते हैं, और दूसरा उस समय विशेष संसार से निराश होकर भगवान को नाम लेते हैं, वो संसार से निराश होकर लिया हुआ नाम बहुत कीमती होता है। ये सब भगवान शुद्ध बनाने के लिए बीमारी देते हैं। भीष्म जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हमने जितने पाप किए हैं वो सब आ जाए, ये जितने बाण हमारे लगे हैं ना ये सब हमारे पाप के फल से है, सब पापों का फल भुगतान हो जाए तो अच्छी बात है, फिर आगे हमारा जन्म नहीं होगा। हे भगवान, आपने तो मुझे इतने बाणों की सैया पर सुला करके पाप रहित बना दिया, शुद्ध बना दिया। तो भगवतो भीष्म पिता, मैंने सरसैया पर पड़े रहकर जितना भगवान का स्मरण किया उतना पहले नहीं किया था। पहले यदि भगवत स्मरण में ही लगे रहते तो वो युद्ध में ही क्यों आते। मैं यह नहीं चाहता हूं कि दुख भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़े। एक और आनंद की बात है, अपने को बीमारी हो गई, बुखार आ गया, कोई और कोई भयंकर बीमारी हो गई, इसको आप तपस्या समझ लो। क्या हाँ, ये तो तपस्या करने का मौका आ गया। तपस्या में क्या होता है, न तो ढंग से खाने को मिलता, न कोई बात करने वाला मिलता, न कोई पास में फटकता, और शरीर के अंदर कई प्रकार के कष्ट सहन करने की जा कष्ट सहन किया जाता है। तो बीमारी को तपस्या की भावना से आप स्वीकार कीजिए, तो जो तप जानबूझ करके करते हैं उससे दुगुना तिगुना चौगुना लाभ मिलेगा, ये तपस्या का लाभ आपको और हो जाएगा। और दुख की प्राप्ति होने पर निरंतर ये बात आती है कि ओहो, मैंने जो पाप किया था ना उसका फल भोग रहा हूं। तो ऐसे करने से आपके मन में एक भावना और बनेगी कि भाई अब पाप नहीं करना चाहिए, ऐसे भोगना पड़ता है, ऐसे भोगना पड़ता है। तो देखो, बीमारी ने आपको पापों से घृणा करवा दी और भगवान की याद दिला दी। भगवान को याद करने में दुख ही तो हेतु बना। जब आप सुख में मस्त थे तो भगवान को कहाँ याद करते थे, अब दुख आया तो भगवान को याद करते हो, तो दुख तो बहुत अच्छी चीज है। इसलिए हमारे मत में तो दुख को सुख से बढ़कर समझना चाहिए। है तो ये बात कठिन परंतु लाभदायक है। इसलिए विपत्ति में भगवान की विशेष दया समझें। ये बात अलग है कि किसी किसी समय में भगवान की याद सभी को आती है, सभी हो चाहे कोई हो आती है। यदि याद नहीं आते तो आप क्या करते, कुछ भी नहीं करते। तो ये आप, ये भगवान की विशेष दया है कि कभी कभी याद के रूप में भगवान आ ही जाते हैं, समय समय पर भगवान आपको याद आ जाते हैं। याद आने के बाद में उनको भुला देना ये हमारी मूर्खता है, वो थोड़े ही कोई भुलवाते हैं, क्यों भुलवाएंगे, यदि भुलवावे तो याद आवे ही क्यों। याद भगवान कराते हैं, भूलते हैं, हम हमारी गलती से भूलते हैं। स्वाभाविक ही कभी भगवान याद आ जाते हैं तो विशेषता से सब काम छोड़ करके भगवान के भजन में लगना चाहिए। माताएं बहनें उधर आ सकते, खाली जगह पड़ी है, खूब आराम से। अब अभी की भगवान याद आते हो उस समय सब काम छोड़ करके भगवान का खूब जोर से भजन करना चाहिए। यदि भगवान याद नहीं आते तो हमारा क्या जोर था, क्या कर लेते हम, पर भगवान याद आ गए, निहाल कर दिया बस। उस समय तो अपना सब काम छोड़ो, भगवान को विशेष याद करो। हर एक विषय की प्राप्ति में, हर एक विषय में भगवान की दया को देखना चाहिए। योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मई पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स प्रणश्यति। जो मुझको सब जगह देखता है, सब में देखता है, मैं उससे अलग नहीं होता, वो मुझसे अलग नहीं होते। इस प्रकार देखने का जो ज्ञान है वो परमात्मा से होता है। हमारी बुद्धि कैसे भगवान को सब जगह देखेगी, भगवान की कृपा से देखती है। खूब अधिक अधिक प्रसन्न और प्रसन्नता लेनी चाहिए, शांति मिलेगी। कीर्तन करते करते प्रेम में एकदम मूर्छित हो जाए, दिखाने के लिए नहीं, बताने के लिए नहीं, मस्ती में मूर्छित हो जाए, होश सब रहे, होश तो पूरा रहे और मूर्छित हो जाए, ये एक अलग ही अवस्था है, अपने आप को भूल जाए। कीर्तन के सिवा किसी बात का ज्ञान नहीं रहे, भाव बढ़ते 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 एकदम भगवान में ही डूब जाए तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे द्रौपदी ने एक ही बार सकाम भाव से एक आवाज लगाई तो भगवान आ गए। अब भगवान ने देखा कि इतने आर्त भाव से द्रौपदी ने मुझे पहले कभी नहीं पुकारा और बड़ी आवश्यकता है मेरी वहां पहुंचने की, तो भगवान वस्त्र रूप से आ गए। जब आप में थोड़ा सा भी प्रेम बढ़ता है तो उस प्रेम को भगवान बहुत करके मानते हैं। प्रेम बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए कि एकदम अपने आप को भूल जाए, मूर्छित हो जाए, प्रेम में पागल हो जाए। वो पागलपन सैकड़ों बुद्धिमानियों से अच्छा है। सत्संग की शास्त्रों में मुक्ति से बढ़कर महिमा बताई है। अपने भाग्य के भरोसे बैठ जाओ कि भाग्य में लिखा होगा तो सत्संग कर लेंगे, तो बैठे रहो। ये चीजें भाग्य से नहीं मिलती हैं, भगवान की कृपा से मिलती है, प्रेम से मिलती है। प्रेम और श्रद्धा की अपने में कमी है तो अपने दया के पात्री हैं। दया आनी चाहिए अपने आप पर, अरे कैसे हमें, भगवान की दया तो बिखरी हुई है, खूब पड़ी है सामने, और हम भाग्य के भरोसे कि भाग्य में लिखा होगा तो सत्संग कर लेंगे, भाग्य में लिखा होगा तो भजन कर लेंगे, इससे बढ़कर हम अपने आप को क्या धोखे में रख सकते हैं। भगवान दया से ही मिलते हैं तो भगवान के आगे रोना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, रो करके प्रार्थना करनी चाहिए, बहुत भगवान प्रसन्न होते हैं। करुणा से रोए, हृदय से नहीं रोए तो करुणा से रोए। भगवान के आने में विलंब हो सकता है। जैसे एक लड़का है जो माँ को पुकारता है, माँ माँ कहकर रोता है, माँ उसकी बात पर ध्यान नहीं देती है। दूसरी स्त्री ने कहा, देख तेरा बेटा इतनी देर से रो रहा है, तू ध्यान नहीं देती है, तू उसकी तरफ ध्यान दे, कितनी देर से रो रहा है, उसके दुख का ख्याल कर। माँ कहती है, चुप रह, ऐसी झूठी रो रहा है, एक आंसू नहीं आया है, बनावटी रोना रो रहा है। तो माँ ये जवाब दे दी। तो इस प्रकार बनावटी रोने का असर माँ पर नहीं पड़ता, उसी प्रकार अपने रोने का कोई विशेष असर भगवान पर तब तक नहीं पड़ता जब तक हम हृदय से नहीं रोते हैं। हृदय का जो उद्गार है, हृदय का जो करुणा का भाव है, उससे अगर भगवान के आगे रोए तो भगवान बाध्य हो जाए, हमारे बाध्य हो जाए। भगवान से रोने के लिए हृदय की व्याकुलता बढ़ जाए कि हम भगवान का वियोग बर्दाश्त न कर सके। हमारे में योग्यता नहीं, गुण नहीं, आदर नहीं, भक्ति नहीं, वैराग्य नहीं, ज्ञान नहीं, कुछ भी तो नहीं। समय हमारा बीत रहा है, भगवान की प्राप्ति हुई नहीं है, खाली हम जा रहे हैं संसार से। इतना बड़ा नुकसान हो रहा है और हृदय में धन के, स्त्री के, परिवार के ये संस्कार अंदर भर लिए, अब मृत्यु आ जाएगी, क्या दशा होगी, आगे का भविष्य देख करके आप रोओगे नहीं तो क्या करोगे। इसलिए भगवान के सामने रो करके अपने हृदय की सारी गंदगी निकालो। एक धनी और दयालु आदमी है, वो मिठाई खा रहा है बैठा बैठा। उस समय एक गरीब आदमी उसके पास बैठ जाए और वो कहे कि भाई साहब मैं भूखा हूं, मुझे भी जलेबी दे दो, तो थोड़ी दया वाला उसको भी जलेबी दे दे, लो भाई तुम भी खाओ, और वो गरीबी प्रसन्न होता है क्योंकि उसने पहले कभी जलेबी खाई नहीं थी। जब वो मीठी मीठी जलेबी खाता है तो उसका दिल खुश हो जाता है, उसकी प्रसन्नता को देखकर वो खिलाने वाला होता है, उसको बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है। अरे मुझे पता नहीं था कि भूखा है, नहीं तो बाबा मैं खाता ही नहीं, मैं सब इसी को ही खिला देता, इतनी प्रसन्नता होती है। ऐसे भगवान तो बड़े उच्च कोटि के दाता हैं, हम कुछ भी न चाहकर अपने को एक अपात्र समझते हुए भगवान से यही कहे, ही भगवान आपके पास अपार दया है, कृपा है, आपके पास अनंत शक्ति है, थोड़ी मुझे भी दया दे दो। भगवान से मांगो, भगवान देखते हैं कि भाई जब इसकी उत्कट इच्छा हो तब तो हम दर्शन भी देवें, इससे मिले, इसको दया भी देवें। जैसे गरीब आदमी थोड़ी सी भी जलेबी खाया तो जलेबी खाने से उसके मन में कितनी प्रसन्नता हुई, ऐसे भगवान की दया समझ के हम कितने प्रसन्न होते हैं, ये भी तो भगवान देखते हैं ना। पात्र को तो जलेबी पैसा देने पर बाजार में हलवाई के यहां मिल जाएगी, पैसे के अभाव में भी कोई न कोई आदमी खरीद करके दे देगा। जलेबी के लिए आतुर होकर किसी से कहे बाबू हमने कभी जलेबी खाई नहीं, हमको जलेबी खिला दो, तो किसी न किसी के मन में तो आ ही जाएगी, वो दिला देता है। तो हम लोगों के हृदय में जो दया है वो तो बहुत मामूली हुई, किसी की दी हुई सी दया है। असली दया तो भगवान के हृदय में जो दया के सागर है, वो पात्र को पात्र कुछ नहीं देखते। यदि वे एक पात्र को पात्र देखें तो बड़ी मुश्किल हो जाए, भगवान के भी मुश्किल और अपने भी मुश्किल। भगवान के ये मुश्किल है कि किसी को कुपात्र समझने लगेंगे तो भगवान को कोई सुपात्र मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सबके जीवन में कितनी कितनी गलतियां हुई हुई है। फिर भगवान को माफ करने के लिए कौन प्रार्थना करेगा और भगवान की दया ही क्या होगी। यदि हम अत्यंत शुद्ध होवें तब भगवान मिले तो फिर भगवान को दया वाला कौन कहेगा। भगवान का स्वभाव कोमल है, दयालु है, दासों के दुख को देखकर बिना प्रकट रहे रह नहीं सकते हैं, उनकी आदत नहीं किसी का दोष देखें, किसी का पाप देखें, किसी की गलती देखें, वो तो कुछ नहीं देखते। कितनी सुंदर बात गोस्वामी जी ने कही है, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सौ बार ही है की। हम लोग हर एक बाई ख्याल करके अपनी ओर देखें, जो कुछ भी हम भगवान की दया का लाभ उठा रहे हैं ये असंभव बात नहीं तो क्या है, क्योंकि हम लोग कितने जन्मों से संसार में आ रहे हैं। यदि हमने सत्संग कर लिया होता तो कभी अपना उद्धार हो गया होता, पर ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं तो ये असंभव सी तो बात है, ये भगवान की दया है। क्योंकि यहां तो हम लोग, कहां तो हम लोग और कहां भगवान। भरत जी ने कितनी अच्छी बात कही, जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत कोरी। हे नाथ मेरी करनी की तरफ ध्यान देखोगे तो 100 करोड़ कल्पों तक मेरा उद्धार नहीं है। और जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधुवति मृदुल सुभाऊ। आप अपने दासों की तरफ, उनके अवगुणों की तरफ देखते ही नहीं, ये आपका बड़ा कोमल स्वभाव है। और हे प्रभु तू दयालु दीन हो तू बन, तो आप तो दीन दयाल और मैं दीन हूं, कैसा बढ़िया जोड़ा बैठ गया महाराज। मेरे जैसा दीन हीन आपकी शरण में नहीं है तो आपको दीन बंधु कौन कहे। मैं दीन बंधु तो महाराज आपका नाम मैं ही तो सार्थक कर रहा हूं। तो इससे हमें विश्वास होता है, संतों ने भी कहा है, भक्तों ने भी कहा है, तो भगवान हमारे अवगुण की तरफ बिल्कुल नहीं देखते। हम लोग भी अपने मन में समझ ले कि भरत जी के समान कि भगवान बड़े कोमल हैं, तो फिर वो हमारे लिए बहुत कोमल मालूम देंगे। भरत से ज्यादा हमारे जीवन में अपराध हो सकते हैं, जन्मों में हुए होंगे, किंतु ज्यादा कितने हो पता नहीं। जहां सूर्य का प्रकाश है वहां थोड़ा या ज्यादा अंधकार का ख्याल थोड़ा ही होता है। सूर्य का प्रकाश होता है वहां पर थोड़ा सा कहीं अंधकार रह जाए ऐसा थोड़ा ही होता है, थोड़ा ज्यादा का ख्याल नहीं होता। वहां तो कितना भी अंधकार हो सब भग जाता है। ऐसे चाहे भरत जी से कितना ही लाखों ज्यादा अपने को हम अपराधी माने, भगवान की कृपा के प्रकाश के सामने सब अंधकार नष्ट हो जाता है। हर एक भाई अपने ऊपर विचार करके देखे, हम अपने पर विचार करके देखते हैं कि देखो कितने नीचे दर्जे के आदमी, और भगवान की दया की तरफ देखते हैं तो अरे भगवान की हमारे जैसे पुरुषों पर दया है, तो और जड़े संतों पर महात्माओं पर तो कौन सी आश्चर्य की बात। जब हम हू पर दया करी है हमारे जैसे पर दया करते हैं। हम जो आपको शास्त्रों की इतनी बात सुनाते हैं तो ये हमारे कोई पैतृक संपत्ति थोड़ा ही है, हमारी कोई कमाई हुई थोड़ा ही है, कोई हमारी अपनी व्यक्तिगत पूंजी थोड़ा ही है। ये तो भगवान की कृपा के सिवा दूसरी कोई बात नहीं है। संसार में मेरे से भी नीची श्रेणी के लोग हैं, वे भी भगवान की दया से मेरे से तो कितने ही ऊंचे नहीं, ब्रह्मा जी की पदवी तक पहुंच सकते हैं, किंतु भगवान के दया के प्रभाव को समझना चाहिए। मैं तो मानने वालों में नहीं हूं, लेकिन भगवान की दया के प्रभाव को न जानने वालों में ही अपने को मानता हूं। उनकी जो दया प्रभाव तत्व रहस्य उसको मैं न जानने वाला और न मानने वाला हूं, तो ऐसे आदमी पर भी भगवान दया करते हैं। जो मानते हैं जानते हैं उन पर कितनी भगवान की कृपा है। इसलिए मैं तो आपसे यही कहता हूं कि अपने ऊपर भगवान की दया समझो, कभी दया से खाली मत समझो, सब पर दया है। जब मैं अपने पर घटा करके देखता हूं कि भगवान की जो दया है उनके जो तत्व रहस्य है उसको जो जानता है उसको कितना लाभ होता है वही जान सकता है। भगवान की दया का तत्व रहस्य नहीं जानने वाला, नहीं समझने वाला, नहीं मानने वाला जो व्यक्ति है उसके ऊपर भी भगवान की अपार अपरिमित दया है। वो ये विचार ही नहीं करते कि मैं इस आदमी पर इतनी दया कर रहा हूं, ये समझता ही नहीं है, तो अब दया क्यों करूं। इतना भगवान को समझने का समय ही नहीं मिलता, दया करते ही रहते हैं। बादल है वो भजन करने वाले के खेत पर भी बरस जाता है और कसाई के खेत पर भी बरस जाता है। उस समय वो ये नहीं देखता कि ये भजन करने वाले का खेत है कि ये कसाई का खेत है। क्या भगवान बादल जैसे भी नहीं है? हर एक मनुष्य को समझना चाहिए मेरे ऊपर भगवान की सबसे ज्यादा कृपा है, ऐसा हर एक को मानना चाहिए। पात्र तो हूं नहीं और दया मेरे पर सबसे ज्यादा है, यह हर एक आदमी को मानना चाहिए। इस बात को मान लेने से फिर उसके चारों तरफ दया ही दया रहेगी। दया के सागर में डूब रहा हूं, ऐसा जो दया का अनुभव करता है उसके लिए भगवान के दर्शन करने की जरूरत ही नहीं है, उसको तो हो गए दया के दर्शन ही तो बड़े हैं। जैसे कोई आदमी गुम्हारे में बैठा हुआ है, गुम्हारे में, और उसकी बारी से झरोके से वो देखता है सूर्य उदित हो गया कि हाँ हो गया। क्यों, सूर्य को नहीं देखा है, वो तो प्रकाश को देखता है और उसका प्रकाश उसके गुम्हारे में भी आ गया है। अब उसको सूर्य को देखने की जरूरत ही नहीं है, प्रकाश आ गया। ऐसे ही भगवान की दया होगी, अब दर्शन की क्या बात है। वस्तु पदार्थ में जो कुछ स्वरूप दिखता है, जड़ चेतन की जो कुछ क्रिया है वो भगवान की लीला है, और पदार्थ आदि में जो कुछ दिखता है वो भगवान का स्वरूप है। ये जो अपने भगवान की लीला कराते हैं ना, रामलीला कृष्ण लीला, ये तो कृत्रिम है, बनावटी है। परंतु इस बनावटी में भी जो भगवत भाव से देखता है वो और विचित्र बात है। परंतु हम तो उससे भी बढ़कर बात कहते हैं कि आप रामलीला कृष्ण लीला को हुई हुई बात को यहाँ बताते हैं, पर ये जो हो रहा है इसको ही आप लीला समझो ना, क्यों आप अलग से लीला में जाओ। वो लीला राम जी ने की वो राम जी के लायक थी, कृष्ण ने लीला की वो कृष्ण के लायक थी, अपने लायक लीला भगवान ये कर ही रहे हैं। अपने को तो इस लीला में भगवान की लीला समझनी चाहिए। संसार में हवा चल रही है या मन इंद्रियों और शरीर के अनुकूल अथवा प्रतिकूल जो क्रिया हो रही है उसको भगवान की लीला देखनी चाहिए। आप ख्याल करके देखिए, लोग सिनेमा देखने जाते हैं उसमें उनको तमाशे दिखते हैं और वे बिल्कुल झूठे हैं, झूठे झूठा ही वहाँ मरा हुआ दिखाते हैं, झूठी नदियाँ दिखाते हैं, झूठे ही खाने की चीज़ें दिखाते हैं, सब कुछ झूठा है और झूठे हैं। और दूसरी तरफ सिनेमा के खेल भी है, ये बुद्धि भी तो इसी प्रकार है, ये बुद्धि भी तो उसे देखकर खुश होती है तो बार बार देखने जाते हैं, क्या पड़ा है भाई, तमाशा है, बनावटी है, फिर भी उसमें रुचि होती है। तो जैसे सिनेमा देखने वाले को सब कुछ झूठा भी देखने की रुचि है, तो ये हमको जो कुछ दिखाई देता है ये भगवान का बनाया हुआ सिनेमा है, इसमें हम भगवान को देखने चले तो कितने आनंद की बात है, इसके मुकाबले तो कोई सिनेमा ही नहीं है। भगवान प्रकट होकर यदि लीला करें और उनको हम भगवान समझ लेवे तो हमको प्रसन्नता होती है। यही भगवान कृष्ण की लीला में है। तो भगवान की प्रत्येक क्रिया गोपियों के लिए लीला थी, और जिनकी भगवान में श्रद्धा नहीं थी उनके लिए लीला भी नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण की लीला में बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी भगवान को भगवान नहीं समझे तो भगवान की बाल लीला उनके लिए लीला ही नहीं थी, और वे जब समझते कि भाई भगवान लीला कर रहे हैं तो ग्वाल बालों को और बछड़ों को ले जाकर वे अपने ब्रह्मलोक में क्यों ले जाते, क्यों छिपाते। उनकी बुद्धि में भ्रम हो गया कि देखे अब कृष्ण क्या करता है। ग्वाल बाल उस लीला को लीला समझते थे और गोपियां तो सबसे बढ़कर लीला समझती थी। घर के द्वार पर जब खड़ी रहती और भगवान उधर से निकलेंगे 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 प्रतीक्षा होती, तो भगवान गायों और बछड़ों के पीछे पीछे उनके घरों के सामने से ही निकलते थे। उन बछड़ों के खुर की धूली उड़कर भगवान के शरीर पर पड़ती तो भगवान धूली दूसरी तो हो जाते, सारे बदन पर धूली धूल भर जाती, सूक्ष्म धूल जिसे मिट्टी कहते हैं भगवान के शरीर पर छा जाती। ऐसे भगवान के धूली धूसरित स्वरूप को देखकर भी गोपियां खूब हंसती और प्रसन्न होती। यदि सारे शरीर पर धूल पड़ने से सुंदरता की महत्ता हो तो दूसरे लोग भी अपने ऊपर धूल गिरा करके देख लो, किंतु इससे प्रसन्नता नहीं होती है। पर गोपियों का भाव था कि भगवान किसी भी रूप में हो, चाहे वो धूली में हो चाहे धूली रहित हो, उनकी प्रत्येक चेष्टा लीला रूप होती है। भगवान एक रूप में होकर के चेष्टा करते थे तो उनकी क्रिया लीला दिखती थी। भगवान अनेक रूप धारण कर लिए, ग्वाल बालों के और बछड़ों के रूप में लीला का विस्तार हो गया, और समझने वालों के लिए भगवान की लीला हो गई, न समझने वालों के लिए कुछ भी नहीं हुआ। तो यही बात है, संसार के लोग भगवान के लीला के रहस्य को समझते नहीं है। वर्तमान में जितने संसार के स्वरूप हैं वे सब भगवान के स्वरूप हैं, उनके द्वारा होने वाली प्रत्येक चेष्टा भगवान की लीला है। तो समझो कि भगवान कृष्ण की मौजूदगी में ही ये लीला हो रही है। ऐसा नहीं कि वो उस जमाने में हुई और अब नहीं हो रही है, समझ का ही फर्क है। अब जो हो रहा है उसको भी भगवान की लीला समझ सकते हैं तो हम भगवान के साथ एक हो सकते हैं। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थित सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मई वर्तते। संपूर्ण प्राणियों में मैं हूँ और परमात्मा में जो एक ही भाव है ये मेरे सिवा कुछ नहीं है, ऐसा जो मानता है वो योगी मेरे अंदर ही रहता है, बशर्ते वह मेरे में ही बरत रहा है, मेरी लीला कर रहा है, मेरे साथ लीला कर रहा है, ये भगवान को बहुत अच्छा लगता है। तो सबको भगवान समझ लेने के बाद जैसे भगवान के साथ बर्ताव होना चाहिए ऐसा बर्ताव सबके साथ होता है। वह सबको भगवान समझकर और रसास्वाद लेता हुआ आनंद मुग्ध रहता है। उसके लिए ऐसा नहीं होता कि ये चीज तो अच्छी है, ये परिस्थिति अच्छी है, ये खराब है, ऐसी उसके अंदर भावना ही नहीं होती। सब कुछ भगवान ही है, फिर इसमें क्या अच्छा और क्या खराब, सब भगवान की लीला है। उसके आनंद की शांति की कोई सीमा नहीं है। जब तक समझ में न आए तब तक ये गड़बड़ होता है, नहीं तो इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति। इस साकार का दृष्टांत यह है कि जहाँ नेत्र मन जाए वहाँ भगवान है। जैसे गोपियाँ जहाँ देखती थी वहाँ उनको भगवान ही दिखते थे, भगवान उनके नेत्रों में बसे हुए थे, क्योंकि भगवान हृदय में थे। हृदय का जो भाव होता है वही तो नेत्रों के द्वारा बाहर जाता है। इसका मतलब है जो चीज़ नेत्रों में बास करे वही बाहर दिखती है और नेत्रों से वही बात बाहर आती है जो हृदय में बैठती है। तो भगवान को अपने नेत्रों में अपने हृदय में बसा ले हो, फिर आपकी दृष्टि जहाँ जाएगी वो भगवान की तरफ ही जाएगी। जब ये समझ लेता है कि सारा ब्रह्मांड परमात्मा में है तो मैं भी तो परमात्मा में ही हूँ, परमात्मा सब में परिपूर्ण है तो वो परमात्मा मेरे में भी तो है, सब में है इसलिए वो मेरे में भी है। परमात्मा सर्व काल में है, सभी समय में है तो इस समय में भी है, सब समय में है तो अभी क्यों नहीं, अभी भी है। अपने आप को परमात्मा के समर्पण कर दे, परमात्मा में रम जाए, परमात्मा के तद्रूप हो जाए। उसकी लीला परमात्मा के बाहर नहीं है। हम लोगों को जिनको ज्ञान नहीं वे लोग उनकी चेष्टा को अलग देखते हैं, हमारा देखना व्यर्थ उसका देखना ठीक। इस प्रकार उसके आनंद और शांति की क्या सीमा है। भगवान के साथ में खेल करता है जैसे गोपी ग्वाल भगवान श्री कृष्ण के साथ खेल करते थे, क्रीड़ा करते थे, पर वे तो किसी किसी समय करते थे, हम तो आठों पहर भगवान के साथ में ऐसी लीला कर सकते हैं। तो हमारे लिए तो ये जो लीला है बहुत दामी है, बड़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार इसको भगवान की लीला समझ करके मुग्ध होना चाहिए। रहा